कैसे लगे, कैसे लगे कृष्ण और हंसने लगे। और जो सोना माँ एक लज्जित और मंद मंद स्मित हास्य और कृष्ण और फैमिली आज के कृष्ण भारी आनंद जो माँ के हमें नहीं जाती बाबार कैसे जोर कर टेने नहीं जो नंद बाबार निकटे जो आसलें यशोदा माँ तक ओ दिए एक तकाइल और तक कृष्ण का छाड़ दिए जर छाड़िए दिए और यशोदा लम्फ दिए चले आसलें बाड़ीत चुपे धीरे धीरे संकोच काटल बात दूजन के कृपा करवार जन्न নারদের ইচ্ছাতে আর তার মধ্যে আর এইসব রসা সাধন করার জন্য তিনি এই রকম হতে তিনি ক্রীড়া করলেন। এইটা বলছেন যে বড় বড় ভক্তগণকে যে কৃপা করেন না যশোদা দেবীকে ব্রজবাসীগণকে সেই রকম হতে তিনি কৃপা করেন। কেন এইগুলি করেন? লাইসেন্স রিনিউ করতে হয় এক বছর পরে, বন্ধুকের লাইসেন্স, তারপরে ঘরের লাইসেন্স কি অন্য জিনিস, ওরকম প্রেমের একটি লাইসেন্স আছে। কিছুদিন করতে করতে
এরকম কোনো পুছনে কি জরুরত নেই, বলছি রাজা কো জরুরত হতি ও পুছতা মুছে যে ইয়ে সেবা করতে হয় জগন্নাথ জি কি। উনোনে কাহা যে হামারে ঘর মে হি আপ রহে মহাপ্রভু জি হুলিয়া করকে উনোনে কাহা যে হাম ঘর মে নেই রহে হামারে লিয়ে ছোটি সে কুটিয়া রহনি চাহিয়ে। আব এক মহাপ্রভু ওই গম্ভীরা থি उसमें एक आदमी मुश्किल से खड़ा हो सकता है और लंबाई में वैसे उसमें दो आदमी रह नहीं सकता, मुश्किल से एक दो आदमी बैठ सकता। निर्जन चाहते थे कि जब महाप्रभु आ गए तो वो निर्जन रहा कि नहीं
हरिकर चाहते।
और जितने महाप्रभु के भक्त सबको निकट ही में ये दिया गया था हरिदास ठाकुर, ये दीवाल तिवाल नहीं थी, पीछे पीछे ही है वो बकुल कला क्या
सिंधु
पास ही आते हैं, लोगों को उधर से घूम करके जाना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं
था, पहले सब इंटरकनेक्टेड
इधर से घूम चले आ गया। अब तो ये घर तक बन गया था ऐसे। और वहीं पर रूप सनातन जी आकर के कहते कि हम लोग भी दीनहीन हैं, कंगाल हैं, मुसलमान हो गए, उनके स्पर्श से ही थे वो। ऐसे ही जो लोग आते थे दिन ही वो वहाँ था और ये यहाँ स्वरूप दामोदर जी रहते थे, हमारे सिद्धांती महाराज जी का जहाँ मठ है वहाँ पर ठहरते थे। और अलग अलग सब लोग रात में अच्छी तरह से भजन कर सकें और निश्चित समय होता वो महाप्रभु जी के पास में आकर के वहीं पर बड़ी भारी राजसभा जैसी बनती थी, महाप्रभु बीच में बैठते थे और भक्त लोग सब जाते। रात में किसी से बातचीत नहीं, और गंभीरा में महाप्रभु जी की कृष्ण की राधा जी के लीलाओं को स्मरण कर बतलाया ना। जैसे एक दिन समुद्र में कूद गए, एक दिन चले गए जगन्नाथ वाटिका में, जाने कैसे दरवाजा बंद और वहां पर पहुंच गए। एक दिन महाप्रभु जी ऐसा भाव आया भागवत का, गोपियां जैसे कृष्ण के विरह में छटपट करती हैं ऐसे छटपट कर रहे हैं, और उनको राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जी उनके कृष्ण करणामृत का श्लोक, राय रामानंद की जगन्नाथ बल्लभ नाटक नाटक का कुछ श्लोक, चंडीदास गीत गोविंद, मैथिल कवि
विद्यापति
विद्यापति के की और श्रीमद्भागवत के ऐसे ही से सुंदर श्लोकों को सुना करके और उनके भावों की उद्दीपना करते थे। उद्दीपना माने क्या? मन में जगाते थे। एक दिन 12 बजे रात हो गई, रात हो जाने के बाद में गोविंद जी को रख करके और गोपाल गुरु को रख करके वो लोग अपने स्थान में चले गए और बोल दिया है कि गंभीरा के गेट पर तुम लोग खत्म हो, रात में कहीं ये निकल न जाए। खूब अच्छी तरह से पहरा दे। वो लोग पैर दबाने के बहाने और वहीं पर सो करके रहे, और इधर न जाने क्यों कब महाप्रभु को नींद नहीं आती थी, भक्तों को ही नींद नहीं आती थी उनको। उन्होंने सुना जब कृष्ण की बंसी बजी, भाव नेत्र से सुना बंसी बजी, और ये रह नहीं सके घर में, भावावेश में ले जाने कैसे, ये गेट यहाँ का गेट वहाँ का गेट घर का गेट सभी को पार कर गए, और पार करके चले गए जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में, और वहाँ पर भावावेश होकर के गिर गए। ये लोग रात भर खोजते रहे, सवेरे पता लगा जी वहाँ पर हैं, वहाँ पर गए उनको ले आया भावावेश नहीं, फिर लेकर के कीर्तन किया और थोड़ा सा होश आया। महाप्रभु जी रोने लग गए। तीन अवस्था होती है महापुरुषों में, तीन अवस्थाएं होती हैं, अंतर दशा, अर्धबाह्य दशा और
बाह्य दशा।
अंतर दशा में कुछ ज्ञान नहीं, वृंदावन में गए हैं अंतर दशा। महाप्रभु जी का अधिकांशतः यही भाव है। अर्धबाह्य अवस्था ये भीतर वाला सब कुछ स्मरण है, अभी बाहरी जगत को भी थोड़ा थोड़ा भी होश है और उसका पूरा है, इधर थोड़ा थोड़ा ही दोनों मिलकर के हुआ अंतर बाजी
थोड़ा वर्णन करते हैं।
और उस समय में जीरा में देख रहे हैं जब मैं कहाँ आया, किंतु इस जगत में आया ये होश नहीं, उस समय कौन सुन रहा है कि नहीं, अपने सखियों को सुना करके रोते हैं, गिरह में तड़पते हैं। और बाह्य अवस्था में देखो अभी कहाँ मैं था, कहाँ चला आया, और छटपट करने लगते हैं,
पुरानी याद तो रहती
है। हाँ तो वो थोड़ी थोड़ी सी याद रहती है। महाप्रभु जी कह रहे हैं उनको कहाँ तुम लोग लाए, मैं तो वृंदावन में था। वृंदावन में था, वृंदावन में था, कहाँ ले आया। मैंने सुना चंद्र उदित हो गया और कृष्ण ने बांसुरी बजाई, हमारे नाम की बांसुरी बजाई। प्रत्येक गोपियां यह समझती हैं कि हमारे नाम की ही बांसुरी बजती है, ललिता समझेंगे ललिता विशाखा विशाखा राधा राधा सभी लोग,
हमारे नाम को राधा नाम की बजाय
तो मैंने महाप्रभु सोच रहे हैं कि समय तो राधा जी है इसलिए अपने नाम की। और सभी अकेले दौड़ती हैं घर से, काश्यम से कल्पदायक वेणु मोहिता आर्य चरिता न चले त्रैलोक्यम त्रैलोक सौभवम इदं च निरुद्ध स्वरूपम जद गो द्रुम द्विज मृगा पुलकान्विधन। महाप्रभु जी बंसी की आवाज सुनते ही मैं प्रमत्त पागल हो गया और पागल होकर के मैं चला वहां पर गया, देखा जिसे वहां पर सभी गोपियां वहां पर हैं, मैं भी वहां पर पहुंची। मैं समझी कि मैं अकेली जा रही हूँ, किंतु वहां पर पहुंचकर देखा जो और देखा क्या है, उनके जो श्रृंगार हैं उल्टे पुलटे हैं, किसी के आंख में एक ही आंख में आधा अंजन, कोई गले का हार कमर में, पैर का वो पहनने का वो गले में या किसी हाथ में या इधर उधर, वस्त्र किसी के जुल रहे हैं लटक रहे हैं,
एक अंजन
होश नहीं, सभी तो कैसे दौड़ रही हैं। यदि किसी का कोई प्यारा से प्यारा आभूषण हो, सबसे अभी बेस्ट कीमती हो, सामने कोई चोर आकर के चोरी करके जा रहा है और उसको देखा तो उसके पीछे पीछे दौड़े, ऐसे गोपियों के मन के रत्नों को शरीर रूपी पेटारी से लेकर के भागा, कौन भागा, ध्वनि लेकर के भाग और उसका पीछा कर रहे हैं। बंसी भाग करके कहाँ जाएगी? ध्वनि कृष्ण के पास में जाएगी। तो वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अजगमो अन्नो अन्नम अलक्षितो दमा, वहां पर ये भी पहुंच। कृष्ण ने पूछा, स्वागत है आप लोगों का, मेरे लिए आप लोग इतना कष्ट करके आए, स्वागत है। करवाने की बात मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? महाप्रभु जी कह रहे हैं भावादित्य में अर्ध अवस्था में ये स्वरूप दामोदर जी को समझ रहे हैं कि ये ललिता जी हैं, और विशाखा जी समझा राय रामानंद को, रूप मंजरी को, रूप गोस्वामी को रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी को लंग मंजरी के रूप में देख रहे हैं, सबको उसी रूप में देखा है। और उनको कह करके गले पकड़ करके रूते हुए ये सब कह रहे हैं, सब दामोदर को विशेष करके कह रहे हैं। मैं भी वहां पर पहुंची, कृष्ण ने कहा ये स्वागत है, अच्छी हमारे दर्शन करने के लिए आई। मैं तो कुछ बोल नहीं सकी, ये दिल लगी कर रहे हैं या यथार्थ समय कर रहे हैं कुछ पता नहीं। उस समय हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा अच्छा, रात अधिक हो गई, तुम लोगों को बन में घर में जाना चाहिए, इससे सबके स्त्रियों को, पतिव्रता स्त्रियों को कभी भी अकेले किसी पुरुष के साथ में नहीं बैठना चाहिए, तुम लोग घर में लौट। उनका परम धर्म है लंगड़ा लूढ़ा जैसा भी कोई हो पति, उसी की सेवा करना हमारी आर्य लल्लाओं का ये परम धर्म है। घर में तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, रो रहे होंगे, बछड़े और गायें, गायें का दूध नहीं दूने से क्या होगा, समय पर झकड़ती हैं, तन में दर्द होता है, उनका रख नहीं सकती, और जब बछड़े भी भूखे हैं से आप लोग घर में बता दें, नहीं तो यदि परपुरुष के साथ में रात्रि में अकेले कोई रहे तो इसका ऐसा पाप लगता है जो नरक जाना होता है, और इस जगत में भी दुख होता है, उस जगत में भी दुख होता है, इसलिए जरूर आप लोग करें। थोड़ी देर के बाद में गोपियों ने कहा राधा जी नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके? इसलिए कि वो भाव में इतने विभोर हो गई और इतनी दुखित हो गई, ये ललिता विशाखा को ही कहना पड़ा होगा, ये नहीं बोल सकती,
ललिता जी बोली होगी,
वो प्रखर है ना, इसलिए वो उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा ये महाप्रभु जी ये सब वर्णन कर रहे, क्यों हमको वहां चलाए, इसका ये कैफियत देते हुए कह रहे हैं, आप जो उपदेश दे रहे हैं ये तो आपके चरण कमलों में ही आपके उपदेश रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, हम लोग से आप यदि कुछ सीखना चाहें तो आप सीखिए, क्यों आप अपने वचनों के खिलाफ कर रहे हैं, विरुद्धाचरण कर रहे हैं। गीता भागवत इत्यादि सर्वत्र में देखा जाता है, और आप कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, भगवान की ही सेवा तो सबसे उत्तम है, सर्वधर्मान प्रत्यज्ञमान एकम शरणम व्रज, और गीता में भी सर्वत्र ऐसा ही कहा है, ये यथा माम प्रवर्धनते ताम तथैव भजाम्यहम, जो जैसा भजन करता है उसको कृष्ण भी वैसे ही भजन करें, और उनको करना चाहिए क्योंकि उनकी वाणी ही ऐसी। इसलिए आप अपना कल्याण चाहते हो, धर्म का विरुद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको गुरु के रूप में वर्ण करते हैं, पहले गुरु जी की पूजा होगी, इसके बाद में और किसी की पूजा होगी। और यदि धर्म का उल्टा पुल्टा होता है, जो भी अधर्म बनती हैं अधार्मिक, तो ये दोष आपका है, क्यों दोष है? इतना सुंदर रूप, इतनी मधुर बंसी की आवाज और अपनी मुख की बोली, इतनी मधुर क्यों ले आए हम लोगों को? इसी के लिए वो कह रही हैं काश्त्रियंग से कल्पनाय तदेव गीता, स्त्रियों स्त्रियों की तो बात ही क्या, वो स्वभाव से कोमल होती, हम लोग स्वभाव की कोमल हैं, आपका रूप ही ऐसा स्त्री जगत में ऐसा नहीं है किसी का जो आपका रूप देख करके, और इस पर भी ये बंसी आती, जिसको सुन करके हम लोगों की तो बात क्या, पशु पक्षी कीट पतंग जितने हैं वो भी हिरणी जो पुरुष को देख करके मनुष्य को देख करके भाग जाते हैं, आज हिरण नहीं भागते, वो जड़ हो जाते हैं चलने वाले, और जड़ जो है वो चेतन हो जाते हैं। तो पक्षी इत्यादि जितने भी हैं, कोयल इत्यादि, मोर, ये जड़ बन जाते हैं, और जड़ जो जमुना है जो चल नहीं सकती या चलती है उनकी धारा तो वो भी बंद हो जाती है, फावर बन जाती है। वृक्ष सब ये जड़ हैं, उनकी टहनियां नीचे झुक जाती हैं, फल फूलों से एकदम भर जाती हैं, कृष्ण का स्वागत करने के लिए एकदम अपने हृदय को दे देती हैं। हिरणे धन्यास मूढ़ मतये अपि हरण्येता, हिरणे भी वैसे एकदम मोहित हो जाती है पतियों को सामने लेकर के और प्रणय की भिक्षा मांगते ही आपकी तरफ। इस तरह से देखते हैं कि जितनी भी जड़ चीजें हैं वो चेतन हो जाती हैं, चेतन भी अचेतन हो जाते हैं। कितना सुंदर ये रूप का माधुर्य किसको आस्वादन होगा, जिसको प्रेम होगा उसको, जितना ही जिसको प्रेम होगा प्रीति होगी, जिसको प्रीति नहीं है उसको कृष्ण का रूप दर्शन करने में भी वो भाव नहीं आएगा। कृष्ण के रूप को देख करके साधारण लोगों को जो प्रेम होगा उससे जिसको असाधारण प्रीति है सखाओं का, सखाओं से अधिक होगा यशोदा मैया का, नंद बाबा का, और इनसे भी होगा अधिक गोपियों को। जाकर उनको देख करके रूप हुआ किंतु क्षणिक लिए, साधारण ही प्रेम थी, गोपियों का असाधारण समर्था प्रेम है, समंजसा है उनका, महिषियों का समंजसा मैंने क्या बटा हुआ प्रेम है, स्त्री पुत्र में परिवार में घर में गोपियों का, ये सब नहीं, केवल मात्र कृष्ण के लिए, कृष्ण को वशीभूत होने में समर्थ है, इसलिए उसका नाम है समर्थारति। और समंजसा, मंजसा क्या
एग्जिस्टेंस,
उसमें
बराबर प्रेम है,
अपने सुख के भोग की लालसा रहती है, कामात्मिका के साथ में वो भी कामात्मिका है, किंतु गोपियां का काम है कृष्ण की तुष्टि के लिए, और इनमें कामना क्या है, कभी कभी अपने स्वसुख भोग के लिए भी कामना इनको हो जाती है, ये दोनों में पार्थक्य है, कभी कभी सब समय नहीं, इसलिए समंजसा है। ये महाप्रभु जी को कह रहे हैं जिसको अधिक कृष्ण के प्रति प्रीति होगी उतने ही कृष्ण के रूप का आस्वादन कर सकेगा, उनके माधुर्य को आस्वादन कर सकेगा। राधा जी में सबसे अधिक है, इसलिए सबसे अधिक उनको, साधारण लोगों में प्रेम नहीं, केवल देख करके बस, उतने ही तक जब तक देखेंगे बस। पांडवों से भी अधिक, उद्धव इत्यादि में, उद्धव आदि से भी अधिक इन गोपियों में है, वासियों में गोपियों में। वो कह रहे हैं कहते 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 प्रेम में भी घोर हो गए, मैं वहां पर चला गया और उनके साथ में क्रीड़ा कर रहा था, क्रीड़ा कर रही थी हम लोग, और इसी बीच में तुम लोग हमको पकड़ करके और यहाँ पर लेकर के लेकर के चले, है हमारा जीवन इस प्रकार से घूमने लगते। इसी तरह से कभी कभी कहते हैं कि वास नैल कृष्ण ना कानेर भीतर दिया मनेर
पक्षी लगो आकुल कोयल मोर का,
क्यों कृष्ण नाम सुनाया हमारा जीवन एकदम गड़बड़ हो गया, और हमारा जीवन उल्लासमय हो गया, क्यों सुनाया, घर की याद नहीं रही, घर सब छूट गया, इसलिए अत्यंत विरह में आतुर हो जा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी घर छोड़ करके आए तो यहीं पर आए, उस समय में राजपुत्र करीब करीब 22-24 वर्ष की उम्र होगी और भी कम ही, कहाँ 6-7 दिन का, 12 दिन का रास्ता, इतने दिनों में ही रात दिन बिना खाए पिए किसी प्रकार से यहाँ आए। उस समय केस बढ़ गए थे, भिखारी के लड़के जैसे लग रहे थे, कपड़े भी मैले हो गए थे, किंतु सौंदर्य फुट करके निकलता था। जब महाप्रभु आए उनको देखा, देखा कि खारी तुम कैसे यहाँ आ गया, तुम गृह रूपी अंधकूप से जिसमें तटी के कीड़े होते हैं ऐसे स्थान को छोड़कर के तू यहाँ आ गया, पहले उनको बना किया था जो मत आना घर मत छोड़ना, अब यहाँ पर कह रहे हैं उल्टा। संसार क्या है? गृह अंध हो, इसको छोड़कर के तू आ गया। दया उलट पड़ी और महाप्रभु जी के निकट में महापुरुष जी ने उनको स्नेह किया और उनको स्वरूप दामोदर यहाँ पर उनके साथ में बैठे थे, उनको हाथों में समर्पण कर दिया। तब से उनका नाम हो गया स्वरूप का रघु,
स्वरूप का रघु।
उस लीला में भी ऐसे ही है, ललिता जी के ये गण में तुलसी अथवा रथी मंजरी है, उन्हीं के गण में है, उनकी सेवा करती है, इसलिए उनके हाथों में दे दिया। उन्होंने भक्ति के प्रारंभ से लेकर के भक्ति की महाभाव और सत्य के जितने भी भाव होते हैं सब उनको समझाए। महाप्रभु के पास में आते थे, समझ नहीं पाते थे, उनसे प्रश्न करते थे, इनसे प्रश्न नहीं करते। महाप्रभु जी ने कह दिया था, हम जितना जानते हैं उससे अधिक जानते हैं, हमने जो कुछ जाना है इनसे जाना है।
अच्छा,
इसलिए तुम उनसे पूछना जो कुछ भी पूछना हो। और उनको कहा जैसे आप इसको सब प्रकार से देखेंगे संभालेंगे, ये यहीं पर उनको कृपा, यहीं पर जो उस दिन बतला रहा था वल्लभाचार्य आए थे,
यही गंभीरा में
यही गंभीर कृष्ण नाम का अर्थ बतला रहे थे, यहीं पर बतलाया कृष्ण नाम का अर्थ नहीं, कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, राधा कांत है, राधा रमण है, और मैं अर्थ नहीं जानता। दूसरे दिन उन्होंने पूछा जो सिद्ध स्वामी के हम टीकाओं को
करेक्शन करके
और मैं दूसरा अर्थ लिखा हूँ भक्ति
पर,
वो मायावाद दूसरा। उन्होंने कहा जो मायावाद सिद्ध स्वामी को जो नहीं मानता वो बेस्या के समान है, अतः तो उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर गदाधर पंडित जी को आदेश दे करके और वल्लभाचार्य जी को गोपाल मंत्र दिलवाया। गोपाल मंत्र एक संबंध है, कृष्ण गोविंद और गोपीनाथ तीनों एक ही हैं, किंतु जब पहली बार मिलते हैं और कृष्ण से संबंध होता है तो उनका नाम होता है मदन मोहन। वो आकर्षण करते हैं ना, अपने सुंदर रूप के द्वारा आकर्षण कर लेते हैं जीवों के हृदय को, उनका नाम होता है कृष्ण ही का नाम
मदन,
क्योंकि आकर्षण किया ना कृष्ण से आकर्षण, किंतु किस चीज से, अपने मदन अथत रूप इत्यादि के द्वारा उसको आकर्षण, इसलिए वह मदन में है। जब और कुछ स्टेज बढ़ जाएगा हमारे अंदर में प्रेम हो जाएगा और जब प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करेंगे, जैसे गोपियों ने कृष्ण की सेवा की, तो उनके लिए जब रास इत्यादि करेंगे तो वो हो जाएंगे गोविंद, गोविंद की सेवा होगी। गो माने गोप, गोपी, गोधन, गोवत्स इत्यादि, उनके साथ में जो क्रीड़ाशील हैं उनके द्वारा जो कृष्ण की सेवा करते हैं तो वो गोविंद हो जाते हैं। और उनके साथ में व्यवहार होने के बाद में कृष्ण का उनके प्रति प्रीति, इनका उनके प्रति जब प्रीति हो जाती है तो वो गोपीनाथ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए गोपाल मंत्र में गोपियों की जो प्राण बल्लभ हैं उनके प्रति हमारी प्रीति हो, उनके चरणों में हम, उसमें पहले कृष्ण भी आए, आकर्षण उन्होंने किया, फिर सेवा दान दिया और अंत में गोपीनाथ के, ये सब शिक्षाएं सब दामोदर इत्यादि ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। यहीं पर रूप गोस्वामी जी मिले, पासी है ना,
हरिदास ठाकुर,
हरिदास ठाकुर यहीं से वहां पर चले जाते। हरिदास ठाकुर कभी दर्शन करने के लिए नहीं जाते, बस महाप्रभु जाकर के उनको दर्शन दे आते।
सनातन गोस्वामी भी तो नहीं गए?
नहीं, यहीं से चक्र देख करके प्रणाम कर लेते, महाप्रभु जी को प्रणाम कर लेते, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी भी, रूप गोस्वामी भी, तो यहाँ पर सभी भक्तों का मिलन स्थान है और महाप्रभु के जितने भी भाव हुए वो सब यहाँ पर प्रकाश किया। महाप्रभु के चले जाने के बाद में, महाप्रभु के समय में एक गोपाल गुरु, एक गोपाल नाम का एक लड़का था, ब्रह्मचारी, छोटा सा लड़का, महाप्रभु जी के सब प्रकार से सेवा करता है, ये और गोविंद जी दोनों मिल करके। छोटा बच्चा होने से प्रिय भी है ना, महाप्रभु का बड़ा प्रिय भी था। एक दिन महाप्रभु जी शौच के लिए कहीं गए, ये भी गया पानी लेकर। महाप्रभु जी ने अपनी जीभ को पकड़ लिया बाहर कर। उन्होंने कहा, प्रभु अपनी जीभ किस लिए बाहर कर रहे हैं, आप पकड़ क्यों रहे हैं? तो ये मानती नहीं है, अभी हम शौच को जाएंगे और ये कृष्ण 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 कर रही, इसलिए पवित्र अवस्था में तो नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, यदि उसी समय किसी का प्राण निकल रहा हो तो वो क्या करेगा, क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु जी ने उसको आलिंगन करके आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा गोपाल
गुरु।
गोपाल नहीं, गोपाल
छोटे से थे,
बकरेश्वर पंडित जी के शिष्य थे। बकरेश्वर पंडित जी महाभाव में उद्दंड होकर के नृत्य करते थे, महाप्रभु के साथ में रहते थे। तो जब महाप्रभु जी चले गए तो ये लोग सब अनाथ हो गए। गदाधर पंडित भी चले गए, स्वरूप दामोदर भी चले गए। धीरे 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 सब भक्त लोग जाने लगे। उस समय में ध्यानचंद्र जी उनके शिष्य थे, गोपाल गुरु जी के, ये यहीं पर रहते थे, उनकी सेवा करते थे। बहुत ही विद्वान, प्रखर विद्वान भी थे, जैसे गोपाल गुरु जी थे विद्वान भी थे, बहुत रसिक भक्त भी थे, महाप्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जब उनके गुरु भी चले गए, उन्हें गोपाल गुरु चले गए, तो ध्यानचंद्र जी रहे। जैव धर्म में उन्हें ध्यानचंद्र और गोपाल गुरु का गो सब लिखा है। तो ये बड़े विलाप करने लगे, बड़े दुखी हो गए। जब दुखी हो गए, जब रहा नहीं गया, अब इनके भी प्राण छूटने लगे। तो कोई वृंदावन से भक्त लोग आए, बोले कि आपके गुरु जी को तो मैंने, गोपाल गुरु को तो वृंदावन में देखा, वीर समीर के पास में।
ध्यानचंद्र
को बोला, गोपाल गुरु के बारे में। हाँ, उनको बहुत आनंद हुआ और वो पैदल चल पड़े। पैदल चलते चलते जितने कितने दिन में पहुंचेंगे, वहां जाकर के देखा भीम समीर पर एक किले के ऊपर में बैठे हुए हैं और हरिनाम कर रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा गिर रही है, भाव गिर रही। गुरु जी को प्रणाम किया, जी गुरु जी हमको छोड़ करके आप यहाँ चले आए, मैं आपके लिए गिरा में तड़क रहा हूँ, आप चलिए उधर। मैंने कहा, जी आप वृंदावन छोड़ करके हम नहीं जाए, जब तुमको कोई जरूरत होगी तुम हमारा ध्यान करना, मैं वहाँ पर खुद आ जाऊँगा और सब व्यवस्था मैं करूँगा। ऐसे ये सिद्ध महात्मा लोग, शरीर यहाँ मालूम हुआ छुड़ा, किंतु शरीर छुड़ा नहीं, लोगों के लिए दिखला दिया कि ये शरीर छोड़ दिया और कहते हुए वृंदावन में जाकर।
ध्यानचंद को लगा कि शरीर छोड़ दिया उनके गुरु ने और यहाँ से वो वृंदावन चले गए।
वृंदावन
औरों को भी दिखाई दिया, बाद में ध्यानचंद को भी मिले।
इस तरह से अनुभूति होती है। इसलिए ऐसे जो महापुरुष लोग होते हैं वो मरते नहीं हैं, ये जीवन मुक्त होते हैं। जीवन मुक्त कृष्ण के परिकर होते हैं, दिखला देते हैं जैसे ये हमारा भी ऐसे तुम्हारे जैसा मैं मरणशील आदमी हूँ, हमको ऐसा साधन भजन करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं। तो उन्होंने जाकर के फिर उनका दर्शन किया और फिर उनके कहने से रोते कलपते फिर आकर के उनकी जो सेवा थी वो सब सेवा कर। ये सब वैसा पवित्र स्थान है, यहाँ पर की धूलि लेने से हम लोग इसीलिए आते कि भगवान की भूमि या भक्तों की भूमि में वो शक्ति होती है जो शक्ति को संचार करती है, जो साधन भजन से नहीं होती। साधन भजन से भक्ति नहीं होती है? एक हृदय के अज्ञानता को और अनर्थ को बस छुड़ाना ही हम लोगों के लिए साधन है, और भक्ति जो आएगी वो अपने आप कृष्ण के समान हुआ है, अपने आप कृपा करके आएगी या महत्पुरुषों की कृपा से आ जाए। कोई ऐसा महत्पुरुष हो, नारद जी इत्यादि हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो लोग यदि दया करेंगे, दया करें मैंने भक्ति से प्रार्थना करी इसके हृदय में आ जाओ, आ जाओ। और एक चीज क्या, जहाँ पर कि भगवान लीलाएं हुई हैं, भक्तों की लीलाएं हुई हैं, जो परम सिद्ध हैं, जैसे ये स्थान है वृंदावन में, केसी घाट है, बंसी भट है, सेवा कुंज है, श्रृंगार भट है और सब मधुबन है, ये सब क्या चीज है?
परम सिद्ध
वृंदावन में सर्वत्र ही राधा कुंड, भांडी वन, राधा कुंड, सर्वश्रेष्ठ श्याम कुंड, ये सब कृष्ण की क्रीड़ा भूमि। बलदेव प्रभु जी स्वयं उस रूप में, उनकी चरण की धूलि वहां पर पड़ी हुई है, वो सब भगवत धाम भगवान के समान है। उसे यदि प्रार्थना करें, उसकी धूलि लें, नहीं ले तभी वो बैठेंगे तो लगेगी ही झाड़ी की जरूरत, कितना झाड़ी है वातावरण में, वो सब प्रेम उनका है, उनकी कृपा है, इसलिए हम लोग आते हैं। यदि उन धूलों की भी दृष्टि हम लोगों पर पड़ जाए तो हम लोग के साथ छूट जाए। साधन भजन करके देखा, एक क्रोध को ही हम लोग नहीं हटा सकते, एक कामना को नहीं हटा सकते, कोई चीज को नहीं कुछ कर सकते। इसलिए यदि इस भूमियों की कृपा हो, कृष्ण का ये वरदान है, यदि किसी को प्रेम नहीं होता है तो कृष्ण की जहाँ लीलाएं हुई हैं, अब कृष्ण से बढ़ करके महाप्रभु है ना, कृष्ण अकेले हैं और महाप्रभु राधा और कृष्ण वो भी करुणा वितरण करने के लिए हैं, इस स्थल में आने से वो कृपा कर देंगे, इसलिए हम लोग आते साधन भजन के लिए नहीं, वे साधन अहत की कृपा कर दें हम लोगों के हृदय में। और जब तक वो नहीं होगी ना, हरि नाम में भी रुचि और प्रीति नहीं, रस उसमें प्राप्त नहीं होगा, भागवत पढ़ने में भी नहीं होगा, कृष्ण साथ साथ आ जाएंगे ना, यदि आधा रात में आ जाएंगे तो कहेंगे प्रभु आप क्यों आधा रात में आ रहे हो। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं महाप्रभु जी और उनके परिकर लोग बड़े उदार हैं, हमारे ऊपर में कृपा करें। ये सिद्ध स्थान है, महाप्रभु यहाँ पर बैठे होंगे, वहाँ पर तो बैठे ही थे, यहाँ पर सब जगह भक्त लोग सब बैठे थे, रघुनाथ जी को, रूप गोस्वामी को, सब लोगों को यहीं पर गया। आज हम लोग का परम सौभाग्य स्थान में आए, हम लोग यहाँ से धूल ले करके अब चले वहाँ गंभीर आने। गौर प्रमाण चंदन गौर हरि की जय, गंभीर आदिला की जय।
रथ पर चढ़ करके वो वन विहार के लिए
परम तेजस्वी प्रजा पालक और जो गुण होना चाहिए इनको एक सिद्ध यात्री से ये पता चला कि इस भूमंडल में समुद्र के किनारे नील पर्वत के शिखर में जो नील माधव दिख रहे हैं उसको क्षेत्र मंडल कहते हैं। नीलमल माधव जी साक्षात भगवत भगवान, उनको दर्शन करने से ही सब मनोवांछाएं पूर्ण हो जाती है। उसके पास ही एक रोहिणी सरोवर है जिसमें स्नान करते ही आदमी चतुर्भुज होकर के वैकुंठ लोक में चला जाता है और वो अंतर्ध्यान हो गया था। उन्होंने अपने चार लोगों को लगाया कि ये किधर में है, जिसमें उनके पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति, कोई कहते हैं ये तो वो विद्यापति वो स्वयं पुरोहित थी और कोई कहते हैं उनका लड़का, किंतु कंद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा में उनको पुरोहित का छोटा भाई बतलाया और लोग सब दूसरी दिशाओं में गए, ये पूर्व दिशा में गए और वहाँ पर जाने पर वो समुद्र के किनारे पहुँचा। बहुत ही सुंदर पर्वत, रमणीय स्थान देख करके इनको हुआ न हो यहीं पर कहीं ये ठाकुर जी हो सकते। रात में ठहर गए एक सबर के यहाँ और सबर उनकी पूजा करने जाता था। उन्होंने इस चीज को पता लगाने के लिए सबर की लड़की से प्रीति कर और कुछ दिनों में ही उसका उसके साथ में विवाह भी हो गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा पहले ही हमारी शादी हो गई है या ब्राह्मण हो या क्या हो। इसके बाद में अपनी पत्नी से कहा तुम पिताजी से पूछो ये वो कहाँ पर जाते हैं। पिताजी पहले नहीं बतलाना चाहते कि उनको अंत में बीज पान करके मर जाऊंगी इसलिए आपको बतलाना पड़ेगा। उन्होंने कि आँख बंद करके इसको ले जाकर के दिखला दें और वो आँख बंद करके ले गए और जब वहाँ गया तो उसकी सुगंध पा करके और ठाकुर जी का दर्शन करके मुक्त हो गया और वो पुष्प चिन्हने के लिए गए और तिलक के लिए चंद्रमा गढ़ने के लिए गए इतने में ये देखा कि एक कौवा उसी कुंड के ऊपर में बैठा हुआ था और उंग रहा था, वो गिर गया, बस जैसे ही वो मर गया और उसके शरीर से शंख चक्र बना, पद्म लिए हुए एक की विग्रह निकली और वो गरुड़ आए उनको बैठा करके लेकर चले। और वो देखा जी ऐसी बात नहीं, बस साथी का तो भी पेड़ पर चढ़ने लगा, इतने में आकाशवाणी हुई तुम्हारे द्वारा बहुत काम होगा, काम मत त्याग करो। साथी साथ वो आ गया, उसका ससुर भी आ गया और उन्होंने दर्शन करा करके और फिर घर ले लिया आप बंद करके। अब ये राजा के पास में जाने लगे खबर देने के लिए, उसने कैद कर लिया, किंतु आकाशवाणी हुई नील माधव की, इसको तुम छोड़ दो, इसको बहुत ही जगत का कल्याण हो, तो उसने छोड़ दिया। अपनी पत्नी को उन्होंने आश्वासन देकर के मैं जल्दी आ रहा हूँ, और चले गए राजा को खबर दिया। राजा आए, जब तक वो आते हैं इतने में समुद्र की लहरों से बाल से दम तक जगत तक मंदिर लुप्त होगा, पहाड़ भी दब गया और गांव भी दब गया, सब कोई चिन्ह नहीं है। उसने प्राय को विचन किया बिना खाए पिए समुद्र के किनारे कुछ पर बैठ करके और आराधना करें, हम मैं मत जाऊंगा यदि आप दर्शन। इसमें ब्रह्मा जी आकर के उनको वैकुंठ लोग ले गए और वहां पर नील माधव का दर्शन किया। उन्होंने प्रार्थना की थी आपके लिए, उन्होंने कहा मैं अब इस मुश्किल में नहीं जाऊंगा, मैं अब चार मूर्तियों में जाऊंगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और चक्रवर्ती। कोई चिंता मत करो, मैं एक पेड़ की धड़ के रूप में गोलाकार जाऊंगा लाल, उसमें चक्र के चिन्ह रहेंगे, तुम तो वहां पर जाना समुद्र के किनारे हमको लेकर के हमारी मूर्ति बनाना, सब काम कामयाब हो। उन्होंने पहले से मंदिर बना रखा था जाने के पहले, जब आए तो देखा जिसे दूसरा एक राजा कहा जी मैंने मंदिर बनाया, ये कहते हैं कि मैं मंदिर बना रहा। अब दोनों में कुछ विवाद हुआ, इसमें काकभूषण जी को बट वृक्ष पर थे अक्षय को अक्षर, उन्होंने आकर के कहा जी नहीं ये तो इंद्रजिम ने बनाया था, बालू में डूब गया था, तुमने पीछे से उसका उद्धार किया और उसने पीछे रिपेयर किया है, इसलिए ये मंदिर तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हें बना दिया, तुम्हें करा दिया। वो राजा अंत में लज्जित होकर के वहां से चला गया, नाम गालो गालो उनका नाम। इसके बाद में वहां पर न जाने कितने मंदिर हुए आज तक, लाखों बार, वही पुराना मंदिर वो नहीं है, लाखों बार वहां पर हुए। जैसे कृष्ण जन्मभूमि में 5000 वर्ष पहले कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ जी ने वहां पर एक मूल मंदिर बनाया इस आदि के तौर पर, उस स्थान पर आज 5000 वर्ष में कितनी बार वो बदला। अभी ये जो मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़वा करके मस्जिद बनवाया, ये 14वीं सदी में बनी और उसको भी 14वीं सदी में होते हुए 19वीं सदी अभी नहीं, वो औरंगजेब जब वो आपको तोड़वा तो 14वीं सदी में बना था, 14, 15, 16 300 वर्ष के बाद उसने तोड़वाया। अब उसके बाद में फिर अभी हाल में हम लोगों के सामने ये मंदिर बना, तो 5000 वर्ष में इतना अदल बदल हो गया,
ये भी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा।
तो वो मंदिर पहले सत्यों के आदि का, वैसे कहो तो कितनी बार प्रलय हो गया, एक दो बार नहीं, कितने ब्रह्मा बदल गए तभी से वो मंदिर वन स्थान, और वहां पर बीच बीच में बनता है करता है बनता है ऐसे करता है। इसे अभी जो मंदिर बनाया ये 14वीं सदी का ये मंदिर है जिसके अब पत्थर गिर रहे हैं, वो पंजिका उदाला पंजिका या क्या नाम है उसका, जगन्नाथ जी की वो पंजिका हो माने उसमें विवरण रहता है।
अच्छा
हाँ उसके जो जो कुछ होगा, जो राजा होगा, जो होगा, जैसे मंदिर की सेवा होगी, प्रतिवर्ष रथ यात्रा कैसी हो रही है, सेवा कौन कौन कर रहा है, ये सब उसमें लिखा जाएगा। पंजिका, पंजिका माने वो पुस्तक के आकार में वो उसको लिखने वाला एक आदमी, तो मुझको याद नहीं आ रहा ये कौन सी पंजिका उसका नाम है, उसमें ये सब विवरण रहता है। तो उसमें आज से कितने वर्ष पहले उसमें लिखा है जो अमुक साल में एक पत्थर बीच से गिर जाएगा। अभी हम लोग गए थे तो देखा जो वो पत्थर लंबा चौड़ा एकदम ठीक ठाकुर जी के सिंहासन के सामने कम से कम तो 20 फुट लंबा,
तो वो तो भविष्यवाणी नहीं,
हाँ तो वो गिर गया ना। ये मंदिर कब ये गिर जाएगा ये कब नहीं लिखा, कोणार्क का मंदिर कब बना है, कब गिरेगा, कब क्या होगा, विवरण उसमें का। तो उसके अनुसार में भविष्यवाणी भी है और भविष्य में क्या होगा और जब जब जो जो हो रहा है उसका भी विवरण
इसमें लिखा जाता है।
तो उसमें ये जगन्नाथ जी के प्रकट का इस सब का भी वर्णन उसमें है, किंतु नृद्युम्न वाला तो उसमें है जो कि संत पुराण में जो बतलाया गया है उसके अनुसार में है, थोड़ा सा कहीं इधर उधर। पद्म पुराण में है उत्कलखंड, उत्कलखंड में कुछ है और कुछ है इसमें, इसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा है, तो दोनों में है थोड़ा सा अंतर है, तो करीब करीब एक ही जैसा मैंने बताया। अब वो उन्होंने आकर के वहां पर बैठ गए, एक मोटा सा एक पेड़ का थड़ कम कम से कम तो 8-10 गज लंबा, बहुत भारी विशाल और लाल रंग का उसमें चक्र के चिन्ह वो बहता पड़ता। इन्होंने बहुत चेष्टा की उठाने के लिए, हाथियां लगाई जिसको उसको निकलवाएं, उसको बांध करके लोहे के रडों से और उसको हाथियों को लगा करके निकलवाने की चेष्टा की, नहीं निकला। सेनाओं को लगाया, बड़े बड़े लोगों को लगाया, किंतु कुछ भी नहीं। जैसे क्रेन से उसमें ऊपर में पत्थर है ना, कहीं कैसे लगते, तो उस सिस्टम से भी लिया नहीं, आकाशवाणी जैसे नहीं होगा। जो पहले शब्द सेवा करते थे उनको बुलाओ और जो कि राजा को खमर दिया उसको बुलाओ, वो लोग आकर के उस व्यवस्था
करते,
तो उनको बुलाया गया। तो एक तरफ में वो लगा सबर, उसका नाम था विश्वावर, और एक तरफ में विद्या
प्रतापति।
हाँ लगे माने क्या, उनकी पूजा विधिवत की, अर्चन किया और उनको कहा कि आप स्वयं ही प्रभु हैं, आप स्वयं रथ पर पधारे। वहीं पर सोने का रथ बनाया था, उस पर लेकर के निकट में खड़ा किया, बस दोनों लगे प्रार्थना किया, थोड़ा सा उठाया अपने आप रथ में उठ करके बैठ गए, और बैठ करके फिर उनको लाया गया मंडप में, और मंडप में रखा गया, देश विदेश के लोगों को निमंत्रण किया गया। ये मूर्ति सुंदर से सुंदर बना ली है, आए सब औजार लेकर के अपना अपना यंत्र, और जब बटले से रूखानी में जब भी ऐसा दिया तो ठंड करके टूट गया और टूट गया, लोहा से भी अधिक कड़ा। अंत में जब कोई किसी से नहीं हुआ तो ये बतलाया जैसे मूर्ति स्वयं अपने आप प्रकटित होती है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। अंत में जगन्नाथ जी ही स्वयं या नीलमाधव प्रभु ही स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आए, गौर वर्ण का बड़ा से जगती ब्राह्मण, और वो आकर के बतलाया कि मैं तो कारीगर हूँ, यदि आदेश हो तो मैं इनको प्रकट करूँ। उन्होंने राजा ने और रानी ने कहा कि हाँ कीजिए, एक मंडप बनाओ और मैं 21 दिन उसके अंदर में रह करके बनाऊंगा, दरवाजा मत खोलना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बड़ा भारी मंडप बना करके वो भीतर ले गए उसको, और उसमें वो भूसा और बाहर भीतर से कबाड़ बंद। 5-6 दिन 7 दिन हुआ तो रानी ने कहा अरे खाया पिया नहीं और उसमें मरेगा, एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, कोई ठुक ठाक तो शब्द हो रहा ही रहा, का जो अब तक दम उसमें उसका हो गया है, अंत हो गया हो। राजा ने बहुत समझाया, साथ तो जाओ 21 दिन के बाद में खोलने के लिए। 7 दिनों 8 दिन रानी रोज रोज कहती है, अब 14वें दिन वो मानी नहीं। राजा को आज से आप क्या कर रहे हैं, एक ब्रह्म हत्या कर रहे हैं, आज जल्दी खोलिए जो कुछ होगा देखा, हमको मुक्ति की जरूरत नहीं, ब्रह्म हत्या लग जाएगी हम लोग मरेंगे। तो राजा ने तोड़वा दिया दरवाजा और ब्राह्मण मुस्कुरा करके बस यही तक होना था, आपने ये गड़बड़ कर दिया। तो ये प्रभु की इच्छा से ही हुआ, केवल आंख बनी थी, नाक बनी, हाथ अभी नहीं बना, पैर नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। 5 मूर्तियां थी, 4 जगन्नाथ, बीच में सुभद्रा देवी और
बलदेव।
इनको चक्र को तो बना दिया था आगे, वो चक्र थी और इन तीनों का पहले आंख बनाई वैसे, अब आंख भी बन जाती ऐसे, किंतु अभी गोल गोल अभी बनाया था और धीरे 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 बना रहा था, इसे 14 दिन में वो हुआ नहीं। और ठाकुर जी की इच्छा थे उसी रूप में हो, उसी रूप में हंस करके वो अंतर ध्यान हो गया, फिर उसी को वहां पर प्रतिष्ठा दिया गया। वर्ष में एक दिन रथ पर चढ़ करके वो वन विहार के लिए आया, अभी तक इसी रूप में चल रहा। किंतु महाप्रभु जी जब आए तो इसमें एक और रूप देखा, उपाख्यान उसमें जुड़ गया है। जगन्नाथ जी को पहले बैकुंठ के अधीश्वर नारायण के रूप में माना जाता है और उनकी पत्नी विमला देवी वो लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और इस रूप में बलदेव जी को भी उनके भाई के रूप में माना जाता है, इस रूप में उनकी पूजा होती है और रथ में निकलता था। महाप्रभु जी आए तो उसमें एक और उपाख्यान जुड़ गया, बृहद भगवतामृत महाप्रभु जी की भावना के अनुसार। वो क्या हुआ, वो इसमें ये जुड़ा, महाप्रभु जी ने जोड़ा। अब तक वो